नारायण 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 राम 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 परमकृष्णमद्वंदनं परम ब्रह्मगुरुकृति सौंदर्य सर्वस्वंदे प्रपन्न पारिजाताय कोटि श्रीकृपाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय सीतासुतम देव कंसुतमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषितीतांगलांदुसुंदर मुखारविंद नेत्र कृष्ण किमी तत्व न जाने हरि ओम नमस्तमात्मे नारायण 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 नारायण। आज बड़ा ही एक आनंद का दिवस है, जिस दिन प्रकट गीता इस रूप से प्रकट हुई, ऐसे गीता अनादि है एवं परंपरा प्राप्त एवं राजस्वियों विदु भगवान इमं विरुषते योगं प्रोतवानां स्वाने ऐसे अनादिकाल से उपदेश आया है, पर इस रूप से ये प्रकट हुआ है आज दिन, वो गीता का जन्म। जैसे भगवान का जन्म मनाते हैं जन्माष्टमी रामनवमी, तो भगवान उसी दिन हुए, पहले नहीं थे, ये बात नहीं है, जन्म दिन है, प्रकट होने का दिन है। ऐसे आज भगवद गीता प्रकट होने का दिन है, बहुत ही आनंद की बात है। इसमें एक बात मैं बताता हूँ, उस तरफ आप ध्यान दें। हमारे भाई बहनों ने प्राय ये समझ रखा है कि भगवत प्राप्ति बड़ी भारी कठिन है, तत्व ज्ञान बहुत कठिन है, परमात्मा की प्रिय भक्ति प्राप्त होना बहुत कठिन है, योग प्राप्त होना बड़ा कठिन है, गीता का योग कर्म योग कठिन है, ऐसा मांग रखा है, मानो उद्धार होना कठिन है, ये मांग रखा है। वो सभी नहीं माना है, हम भी ऐसा ही मानते थे, तो कोई बात नई बात नहीं है, परंतु गीता के अध्ययन करने से हमें एक बात मालूम हुई है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, ये संसार से विमुख होना कठिन है। भगवत प्राप्ति सबको है, स्वतः स्वाभाविक, हमारा मुख केवल संसार की तरफ है, ये ही घुमाना है बस, उसमें भी भगवान की तरफ घुमाने में मेहनत नहीं है, संसार की तरफ से मुख मोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता मान रखिए, भगवत प्राप्ति की वो कठिन नहीं है, संसार से उपराम होना, वैराग्य होना, इसमें कठिनता है। तो भगवत गीता एक बहुत विलक्षण बात कहती है, उस तरफ आप भाई बहन ध्यान दें। व्यवहार में परमार्थ कला, व्यवहार करते हुए परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाओ, ये विशेष बात कैसी भगवत गीता। व्यवहार में सर्वकर्मण्य भी सदा पूर्वान, कर्मों के साथ में तो सर्व शब्द लगाया और कुर्वाना के साथ में सदा लगाया, सब कर्म सदा करता हुआ, तो कर्मों की कोई बाधा नहीं कि विघ्न छोड़ दे, साधु हो जाओगे, सन्यासी हो जाओगे, जंगल में चला जाओगे, एकांत बैठे, गुफा में रहे,
नहीं, सर्व कर्म नहीं। जो शास्त्र विहित कर्म है, जो मर्यादा है, उसका करता हुआ, अपनी मर्यादा में चलता हुआ और सदा करता हुआ, रात और दिन मशीन की तरह करता हुआ, तस्मात असुतः सतत कार्यम कर्म समाते रहो, अनाशतः कर्म ओम कार्यम कर्म करो चाहिए, निरंतर कर्म करता रहे, तो कर्म परमात्मा की प्राप्ति में बाधक नहीं है। पातंजलि योग दर्शन में कर्म को रजोगुण बताया है और जड़ता पूर्वक तमोगुण बताया है और सात्विक को बताया प्रकाश, प्रकाशक क्रिया स्थेमशाली, ऐसा लिखा स्थेमशाली, प्रकाशक क्रिया स्थेमशाली, तीनों गुणों का नाम प्रकाश रूप और क्रिया रूप और स्थिर स्वभाव वाला, जड़ता वाला, ऐसा बताया है। परंतु गीता ने कर्म को दोषी नहीं बताया है, गीता ने रजो रागात्मक बुद्धि रागात्मक दोष को दोषी बताया है, क्रिया तो जीवन मुक्त में ही बताया भगवान ने, प्रकाशन च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न द्वेषी संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, राग द्वेष नहीं करे, प्रकाश सात्विक क्रिया, प्रवृत्ति सात्विक क्रिया है, प्रकाश सत्वगुण है, क्रिया रजोगुणी है, तो क्रिया को रजोगुण गीता ने माना है, परंतु क्रिया रजोगुणी बाधक नहीं है, बाधक है राग आसक्ति, वो राग पदार्थों में भी होता है क्रियाओं में भी होता है, दोनों से अलग होने पर रोगारूढ़ होता है, यदा ही मेन्द्रियार्थेषु न कर्म सुवंशते, न तो क्रियाओं में आसक्त होता है न पदार्थों में भोगों में आसक्त होता है, और न संकल्प भी लगता है तो वो योगारूढ़ हो जाता है, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदा उच्चते यदा यदा और तदा। तो प्रकाश क्रिया और जो जड़ता है मोह है, इसके आंशिक आने पर भी ना तो राग करता है ना द्वेष करता है किसी से ही, ये राग द्वेष है खास। सज्जनों भाइयों और बहनों, आप लोग कृपा कर ध्यान दें, हम जो संसार में सुख सुविधा आराम चाहते हैं और दुख नहीं हो जाए, संताप नहीं हो जाए और परिश्रम भी करना न पड़े, ये महान बाधक है। बहन डरता है कि हमारे कर्म शुद्ध नहीं है, इस बात से शुद्ध नहीं हुआ है, अंतर्गत शुद्ध नहीं है, इस बात से शुद्ध नहीं हुआ है, ये शुद्ध अशुद्ध सब ठीक हो जाएगा, केवल इन दो बातों पर ख्याल रखे, पदार्थों में व्यक्तियों वस्तुओं में क्रियाओं में आसक्ति न हो, कामना न हो, राग न हो, अपने सुख सुविधा में जो राग है ये महान पतन करने वाला है। आप कितने विद्वान बन जाए, बड़ा अभ्यास भी आप कर रहे हैं, पर सुख सुविधा ढूंढते रहेंगे तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, न भगवत दर्शन होंगे, न भगवान में प्रेम होगा, गीता के देखने से ही बात मालूम होती है। और इनको समान कर लो आप तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, सुख दुख है समय कृतवार, राधा लाभ जया जय तथो युद्धा सो, इसके बाद युद्ध करो नहीं, लाभ हानि जय पराजय सुख दुख को समान समझ करके, सुख की तरफ तो आकर्षण होता है और दुख से विकर्षण होता है, दुख न आवे सुख आ जाए, और ये आप कर लो भले भावना, सुख आए बिना रहेगा नहीं, ऐसे दुख भी आए बिना नहीं रहेगा, सुख को नहीं चाहो तो सुख आएगा, अगर दुख को नहीं चाहते तो आता ही है, इसमें आश्री क्या है, अगर सुख को चाहते हो तो चाहने मात्र से सुख आएगा नहीं, पक्का विचार है। क्या आदमी जितना धन चाहता है धन आ जाता है, जितनी सुख ना सुख चाहता है सुख आ जाता है, नहीं आएगा, सुख दुख का आना कई विधान के आश्रित है, इच्छा के आश्रित नहीं है, इच्छा की इच्छा के आश्रित परमात्म तत्व है, परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहो तो वो केवल आप लालसा के आश्रित है। मन धन संपत्ति भोगों की प्राप्ति इच्छा मात्र से प्राप्त नहीं होती। तो ये जो इच्छा है सुख की और संग्रह की, ये खास बाधा है। खास गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रतिषेध साम, भोग और ऐश्वर्य मनु संग्रह कर ले सुख भोग ले। ऐश्वर्य क्या? संग्रह, हमारे पास संग्रह हो जाए हमारे पास, और सुख भोग है। इसमें जो आसक्त है और जो स्वर्ग आदि में जाना है उनसे जिनका चित्त अपहृत हो गया है, उनकी व्यवसायत्मा बुद्धि समाध न विधि, उसी परमात्मा विषय निश्चय करने वाली बुद्धि नहीं होती। ये 41 से 44 तक का व्यवसायत्मक बुद्धि एक है, कुल एक होती है। ये 44 तक का प्रकरण 4 श्लोकों का मुख्य करके बाधा बताई है, भोग और ऐश्वर्य, संग्रह करना और सुख करना, सुख रहना। इसमें एक मार्मिक बात बतावे, आप विशेष ध्यान दें। संग्रह बाधक नहीं है, सुख बाधक नहीं है, सुख की इच्छा और संग्रह की इच्छा बाधक है। इच्छा से सिवाय दुख के कोई एक लाभ नहीं होता, और बंधन और पाप कोई बाकी नहीं रहता। नुकसान तो कोई सही बाकी नहीं रहेगा, लाभ कोई सही नहीं होगा। इतनी बात का त्याग नहीं कर सकते, और त्याग क्या करेंगे? खूब इस विचार कर लो और शंका करो जितनी हो सके उतनी, हमारे को तो लाभ होगा। आप शंका करोगे अपना संदेह मिटाने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, हार जीत के लिए नहीं, संदेह मिटाने के लिए। जितना हमारे लाभ होगा, आपके लाभ होगा, दूसरों को भी लाभ होगा, कोई सुने को लाभ होगा। भोग और ऐश्वर्य में जो आसक्ति है, और आगे भोग मिलेगा, आगे स्वर्ग में भोग मिलेगा, उसमें भोग मिलेगा, ब्रह्मलोक का भोग मिलेगा, यहाँ का धन हो जाएगा, आशु संपत्ति धन हो गया, इतना और हो जाएगा, इतना। ये जो इच्छा है ना, ये बात है। इसके लिए उपयोगी गृहस्थाश्रम है, साधु आश्रम से भी बढ़कर गृहस्थाश्रम है, क्योंकि गृहस्थाश्रम में सब बहुतों के साथ संबंध रहता है और साथ रहना पड़ता है। साथ रहते हुए दूसरों को सुख कैसे हो ये दिया जाए, तो पतिव्रता का कल्याण क्यों होता है? पतिव्रता केवल पति को सुख देना चाहती, नौकर केवल मालिक को सुख देना चाहे, मालिक केवल नौकर को सुख देना चाहे, माता पिता बच्चों का सुख देता है, बच्चे माँ बाप का सुख देता है। ये सुख लेने की चीज नहीं है, ये देने की है। पुराने जमाने उढ़ावनी करते थे, उढ़ावनी गली सभी बड़ा सुंदर मलिदा बनात थी। पहले पुराने जमाने में बनात होती थी, बनात बिहारी जी को उठा दी लाल बनात, तो बनात उठाया करते। आजकल दूसरा उठाते थे, आजकल क्या करते हैं पता नहीं। आज की रीति से मैं पूरा परिचित नहीं हूँ। बढ़िया दुशाला जरीदार किनारों पर जरी लगी, ऐसा दुशाला उठाते थे। वे बढ़िया चीज ओढ़ाने ओढ़ाने में खत्म होता, ओढ़ तो कोई नहीं, उन्होंने उठा उठा दिया, उसमें उठा दिया। ऐसे दुख तो ओढ़ाने से है, लेने के नहीं है, ओढ़ने के नहीं है। संसार का सुख आराम मान सत्कार बढ़ाई वाह वाह, ये सब ओढ़ावनी है, ये अपने अपने लेने की नहीं है। ये खास बात है। कली भाई एक ने पूछा कि खास बात है क्या है, वो समझते हैं कि हमारे कर्म शुद्ध नहीं है ये बाधा है। तो ठीक है, उनका कहना भी ठीक है, जानना मानना भी अच्छा है,
परंतु वास्तव में जो संयोग जन सुख है ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख जो नहीं एक ही बचा है। संबंध जन्य जितने सुख है, धन का संबंध हो, स्त्री पुत्र का संबंध हो, भाई संबंध कुटुंबियों का हो, मित्रों का हो, धन संपत्ति का हो, मकान आदि का हो, संबंध हो जाए, ये मेरे हो जाए, मेरे को मिल जाए, मेरे को मिल जाए, ये संबंध जन्य जितने सुख है भगवान का दुख योने एव, ये दुखों के ही कारण है। ही लगा बड़ा जोर दिया है, केवल दुखों के कारण है। मेरा मान मिल जाए, सुधार मिल जाए, आदर हो जाए, प्रसिद्धि हो जाए, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, लोग मेरे को अच्छा समझे, ये ही महान बुराई का जड़ है। आप देख लो, खास पतन का कारण है, खास भीतर में भोगों की संग्रह की इच्छा, संग्रह की इच्छा भी होती भोगों के लिए, सुख भोग के लिए। अर्जुन ने पूछा है कि महाराज ये मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है, क्योंकि पाप का फल दुख होता है, अगर दुख कोई चाहता नहीं तो फिर पाप क्यों करता है, किससे प्रेरित और करता है, स्वयं तो नहीं कर सकता, कोई न कोई इसको जबरदस्ती बला भी नहीं हो जाता, बलात्कार से कोई कान पकड़ के लगा दे, इस तरह से पापों में लगाने वाला कौन है, यह अर्जुन ने पूछा। प्रकृति लगाती है, पूर्व प्राप्त लगाते हैं, भगवान लगाते हैं, और कौन लगाता है, लगाने वाला कौन है, प्रकृति है, माया है, कोई कामना है, इच्छा है, चाहना है, भोग है, कोई ईश्वर है, कोई महात्मा है, कोई संत है, दुष्ट है, कोई शैतान है, माया भगवान कौन है, ये पापों में लगाने वाला कौन है। तो भगवान ने उत्तर दिया, काम है ऐसा क्रोध, ये कामना दो ही भाग, संग्रह की कामना, सुख की कामना, सुख भोग की इच्छा, ये मांगने वाली है। भाइयों बहनों, आप खूब विचार करें और मेरी बात पर विचार करें, और शंका है वो शंका है लिख लें, और मेरे को भगत भगत पूछे, मेरे को सुख मिले, सुख से रहूं, आराम से रहूं, सुख सुविधा रहे, दुख न हो जाए, संताप न हो जाए, ये इच्छा है। अरे इसे मिलेगा नहीं कौड़ी एक, सुख मिलेगा नहीं इससे। अगर इच्छा से सुख मिलता हो तो दुख कौन भोगेगा, दुख की इच्छा कौन करता है, कोई करता ही नहीं, फिर दुख वो होना ही चाहिए। सुख की इच्छा से सुख नहीं मिलता, इच्छा से परमात्मा मिलते हैं, संसार की इच्छा छोड़ दो परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, परमात्मा की जोरदार इच्छा करो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा से वो चीज मिलती है जो मौजूद होती है, और जो पैदा होती है वो इच्छा से नहीं मिलती, उसके कर्म होता है, कर्म कारण होता है उसमें। जो चीज पैदा होती है उस चीज की प्राप्ति कर्मों से होती है, क्यों कर्म का आरंभ और अंत होता है, तो कर्मों से मिलने वाला फल भी आदि और अंत वाला ही होगा, नित्य होने वाला होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा। जो चीज मौजूद है उसको मांगने से हो जाता है उसको, अथवा उसको जानने से, भक्ति मार्ग मांगने से हो जाता है, और ज्ञान मार्ग जानने से हो जाता है, उस जान वो है ही बस, केवल संभालना है। शंकर सहज स्वरूप संभाला चीज पर ये देख लिया घड़ी घड़ी, अच्छा इनमें क्या परिश्रम करना पड़े, कौन सा पसीना आता है इनमें, ये घड़ी है सब, केवल दृष्टि डाल दी, और संसार से दृष्टि हटाने से दृष्टि जाएगी, अरे संसार के भोग भोगते रहे और सुख भोगते रहे और दृष्टि कर दो, बातें कर सकते हैं, मेरे को बातें बहुत आती है, बहुत बनाई है मैंने, बातें कही है, ज्यादा बड़ा नहीं था तब से लगा हूँ, सफेद बाल हो गए हैं, कहते कहते तो ये जानने से कहने से ना महात्मा प्रवचन लभ्य मैं दिया ना बहु ना सुन।
प्रवचन से नहीं, श्रुति से भी नहीं, अब दोनों का नाम आ गया उसमें, श्रुति में दोनों का नाम आ गया। फिर प्रवचन से नहीं, श्रुति से भी नहीं, अब दोनों का नाम आ गया उसमें, श्रुति में दोनों का नाम आ गया। ना महात्मा प्रवचन ही नहीं लग गया मेरे लिए, न मऊ ना सुचे न आपके लिए, बहुत सुनकर तो प्राप्ति हो जाएगी, ये बात नहीं, बहुत प्रवचन कर दोगे तो हो जाएगा, ये बात वेद कहा, वेद भगवान ने कहा, कहत कबीर मैं कहता डरू, और गोर कह जिसका मैं क्या करूं, तो वेद कहते हम क्या करें बताओ, वेद की वाणी है, वेद की वाणी तो सबको माननी पड़ती, नहीं मानो तो धक्का खाओगे, माननी पड़ती है, माना चाहिए, प्रभु सम्मत वाक्य है। तो वास्तव में संसार का जो सुख चाहना है वे दुख योने एव, और आज अंत वंत आदि और अंत वाले होते, नित्य रहने वाले होते नहीं, न तेसु रमते बुधा, बुधा तेसु न रमते, विवेकी समझदार पंडित उसमें रमण नहीं करता। अर्थ क्या हुआ कि जो रमन करते हैं वो विवेकी नहीं है, समझदार नहीं है, मूर्ख है, लंच है, बिल्कुल बेसमझ है। पशु पक्षी नीच कीट पतंग सांप बिच्छू गोरे आदि जो नीच नीचे प्राणी हैं वे भी सुख चाहते हैं, भैंसा है सुअर है वे भी सुख चाहते हैं, कुत्ता है बिल्ली है वे भी सुख चाहते हैं, देवता भी सुख चाहते हैं, नरक वाले भी सुख चाहते हैं, स्वर्ग वाले भी सुख चाहते हैं, 84 लाख चुनी वाले भी सुख चाहते हैं, मनुष्य भी सुख चाहते हैं, फिर मनुष्य की महिमा क्या हुई, यही तनुकार फल है विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है, आज इस तनुकार तो विषय ही भाई, विषय है सुख, आज तो मनुष्य ने कमर कस ली है कि आज का तो सुख भोग के लिए ही जीवन है, अब कैसे सब खास बात है गीता जी की, आपकी शंकाएं जितनी हो लिख लो और पूछ लो और बात करेंगे, मेरे को आनंद आता है, ऐसी बातें कोई पूछे तो मेरे बहुत प्रसन्नता होती है कि कोई पूछने वाला तो है, नहीं तो क्या जो सुन लिया कहना सुन के हो जाएगा, पथ का पाठ करते बताया व्यसन ना मूर्ख, ये व्यसन है, कहने का भी व्यसन है, सुनने का भी व्यसन है, त्रिम तुमको प्रसन्न होता है, व्यसन ऐसे व्यसन है। अच्छी एक भगवत चर्चा की जाए, इतनी देर तक कहने वाला के समय चर्चा में लगता है, सुनने वाले में लगता है, बड़ा पुण्य काम है, बड़ी पवित्र चीज है, इसमें संदेह नहीं, परंतु जब तक आपकी लालसा भोग और संग्रह की रहेगी, मान और बढ़ाई की रहेगी, नाम की और अपने सुख के आराम की रहेगी, तब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, आप किसी विषय विचार कर लो। एक बात कहने की मन में आती संकोच होता है, मैंने देखा केवल पोथी की बात नहीं है, मैंने देखा विचार हुआ है, इस मार्ग में मैं लगा हूँ, इस मार्ग में लगा, अब भी लगा हुआ हूँ, अभी ऐसा नहीं कहता तो मैं तो महात्मा हो गया, बड़ा ऊंचा मेरे नहीं है, मैं तो इसमें लगा हूँ, और इसमें लाभ होता है इसमें मेरे संदेह नहीं है, इसमें लाभ हुआ है और होगा और होता है, जरूर होता है, और आप कितने ही कर लो शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। तो सज्जनों केवल संसार के सुखों की इच्छा है, यही बात है, न तेसु रमते बुधा, विवेक उसमें रमण नहीं करता, रमण करते हैं वे विवेकी नहीं है, अविवेकी है, अज्ञानी है, मूर्ख है, बेसमझ है, गीता कहती है। तो गीता जयंती का आज दिन है, तो वास्तव में क्या है, अर्जुन की शोक था, अर्जुन मरने से नहीं डरता था, मारने से डरता था, युद्ध होगा इसमें मर जाऊंगा ये डर नहीं था, और भय नहीं था, गुरुजनों को मारूं कैसे, भीष्म और द्रोण कथम भीषम। हाँ कथम भीषम संख्य द्रोण से मधुसूदन इसमें पति इस बाणों से और पतियों से हमें ये मारे तो मार सकते हैं, पर उनको मारने के सामने मारू गुरु के सामने ऐसा काम ऐसे सीखा पूजा रहू ये पूजा के राय करूंगा उनको बाण से मारना पाप में वास वेदमान तो दुर्योधन आदि को मारने से पाप ही लगेगा पाप में वास वेदमान अत्वेता एव आदताय न एतान आदताय न अस्मान प्रापम एव आश्रयेत केवल पाप ही लगेगा। तो वो मारने से डरता है मरने से नहीं डरता है। जो भगवान कहते तुम भयादिनाथ उपरंदर मन से देखवा मारा था महर्षि लोग तेरे को भय के कारण से उपराम मानेंगे कोई नहीं मानेंगे कि दया के कारण से उपराम हुआ है तेरी बड़ी भारी निंदा हो जाएगी। ये शाम को बहुमत हो भूतवा याशिष लाघवम जिनके बहुमत हुआ कि युद्ध का काम पड़ेगा तो दो हाथ कर दे बड़ा अर्जुन है ऐसा कोई नहीं है ऐसे लोगों के मन में जती हुई बात है वो तेरी सब कीर्ति नष्ट हो जाएगी अपमान होगा निराश होगा तिरस्कार होगा। अर्जुन कहते मैं ये चाहता ही नहीं हूँ मेरी ये इच्छा है ही नहीं कोई भय है ही नहीं हमारे को भय कहीं नहीं है भय किस बात का है कि गुरुजनों को मारूं कैसे। तो भगवान ने इसका उत्तर बताया कि मारने के लिए युद्ध नहीं है युद्ध है कर्तव्य बुद्धि से करना प्राप्त हो जाता है कर्तव्य वो सबसे श्रेष्ठ हो जाए निज प्राप्त हो जाए प्राप्त भी कर्म का अनुष्ठान करना है युद्ध तुम्हारे को प्राप्त हुआ है। दुर्योधन आदि को बहुत कह दिया नहीं माना उन्होंने कि हम तो युद्ध ही करेंगे युद्ध बिना सुई के अग्रभाग टिके इतनी मैं दूंगा नहीं संपत्ति जमीन दूंगा नहीं सुई यावधि तीक्ष्ण सुरुचिया विधि अग्रण के तीख से तीखी सुई लेना अग्रभाग टिके इतु अग्रभाग तीखी सुई की नोक टिके छोटी सी इतनी जमीन में बिना युद्ध नहीं दूंगा। तुम कहते तो ये दे दो भगवान ने कहते पास में दे दो थोड़ी सी जमीन दे दो कि नहीं देंगे तो तुम्हारे को युद्ध प्राप्त हुआ है जो जो जने युद्ध किया है कोई नहीं जो जने युद्ध किया है अर्जुन को युद्ध प्राप्त हुआ है प्राप्त हुए की बात एक याद आगे बीच में कर्दम ऋषि थे ना उसके पास राजा पहुंचे अपनी कन्या लेकर के महाराज आप विवाह कर दो तो कर्म ऋषि ने कहा भी प्राप्त चीज का त्याग नहीं करना चाहिए कि खबर दे हुए मनु मनस गए मनु महाराज ने कहा कि प्राप्त हो जाए बस तो उसका त्याग नहीं करना इच्छा होने में थोड़ी बहुत भी और प्राप्त हो जाए तो त्याग नहीं करना चाहिए विमुक्त संग हो उसमें भी प्राप्त हो जाए थोड़ी बहुत भी आवश्यकता हो तो ना नहीं करनी चाहिए मेरे काम युग तो उसको कर ही नहीं चाहिए। तो मैं अगर आपके प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरा कन्या का ब्याह करना चाहता हूँ वर चाहता हूँ मेरी पुत्री के लिए तो नहीं सीखना चाहिए तो कर्म ही चुप रहे ना नहीं दिया ना नहीं कही कि मैं नहीं लूंगा मन में थी ही। तो जब भोग भी स्वतः प्राप्त होगी तो मुक्त संग को भी त्याग नहीं करना चाहिए युद्ध से जा क्रूर क्रम जिसमें गला कटने की संभावना वो कैसे त्याग किया जाए वो कुछ त्याग किया जा सकता है। आज तो सुख का त्याग करते हैं वास्तव में दुख का त्याग करना मुश्किल है प्रतिकूलता का त्याग करना मुश्किल है। शास्त्र की दृष्टि से प्रतिकूलता से डरते हम भाग जाए तो कुत्ते ही भाग जाते हैं नहीं भाग जाते हैं क्या बड़ी बात है। इस बात से हृदयम स्वर्ग द्वार मुखावृतम सुखिन क्षत्रियापार्थ लभन्ते युद्ध में हृदयम ऐसा युद्ध प्राप्त होता है क्षत्रियों को होता है हर ऐसा सुखिन क्षत्रिया भाग्यशाली वे क्षत्रिय है जिनको ये प्राप्त हो जाता है हर एक को नहीं मिलता है ऐसे हारा हुआ युद्ध है। तो कैसे करोगे सुख दुख इस समय के तो अल्लाह भाला हो जाए
ये बात समझ। तो लाभ हानि जय पराजय सुख दुख समान करके फिर जय को प्रस्तुत करूं। तो आपकी सिद्धि असिद्धि में, सुख में दुख में, मान में अपमान में, निंदा में प्रशंसा में, आराम में भजन में, परिस्थिति कैसी आ जाए अपने चित्त को संतुलन रखो ठीक तरह से। परिस्थिति आवेगी, संसार का स्वरूप है अनुकूलता प्रतिकूलता, हरस आवेगा ही। भगवान के आ गया और तो आप क्या बताओ, भगवान के आ गया। प्रातः भवामी वसुधार में चक्रवर्ती, सुबह तो चक्रवर्ती हो जाओ, सोहम रजा में जटिल तपस्वी चरण के तपस्वी उगल जा रहा। कितनी विशेष बात है, कितनी अलौकिक बात है। प्रातः भवामी बस यचिंत दूर चरम प्रयाति येत सापि न कृतम देहाभ्युपेति। प्रातः भवामी वसुधार चक्रवर्ती सोहम रजा में विपिने जटिल तपस्वी तपस्वी दिशा धारण करके जा रहा। तो ये आती है अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है। हरिश्चंद्र आदि राजा वन देखो जितने धर्मात्मा संत महात्मा हुए हैं, अनुकूल प्रतिकूल आती है। छोटे छोटे नीचे से नीचा, पशु से पशु, नारकी से नारकी में भी अनुकूल प्रतिकूल आती है। तेल में उबाल करके उसको भी हवा में डाल दिया जाए तो श्वास आने लगता है, चेत हो जाता है, सुख मिलता है। तो सुख तो नर्कों में मिलेगा, स्वर्ग में मिलता है। भागवत में साफ आया है प्राणी नाम ये तथा दुखम तस्मा निश्चय सदुत सुखम ऐन्द्रिय राजन स्वर्गे नरक ये वो वहा। प्राणियों को स्वर्ग में भी नरक में भी है, ऐन्द्रियम सुखम ये तो पड़ेगा। कैसे है कि प्राणी नाम तथा दुखम, जैसे दुख न चाहते मिलता है ऐसे न चाहते सुख तो मिला है। तस्मा देश है तो दुख हुआ है, जो आज विवेक रूप से इसकी इच्छा न करे, इसकी इच्छा में ही रात दिन फंसे हुए हैं, इसकी इच्छा के त्याग करना, ये गीता खास कहना। अब इसमें शंका हो आप पूछो, संदेह पूछो, सिद्धांत की बात है। अब इसका उपाय क्या है? कर्मयोग विशिष्ट है इसमें, भगवान का कर्मयोग। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए माँ बाप को सुख पहुंचाओ, भाई भौजाई भतीजों को सुख पहुंचाओ, स्त्री पुत्र को सुख पहुंचाओ, और बहनों के लिए सास ससुर पति देवर जेठ नंद इनको सुख पहुंचाओ, अपने सुख कहते हैं सुख पहुंचाओ। प्रेम होगा, गृहस्थ बड़ा सुंदर रहेगा और कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इनको सुख कैसे हो, इनको आराम कैसे हो, स्त्री पुत्र को सुख कैसे हो, भाई भौजाई भतीजे को सुख कैसे हो, माँ बाप को सुख कैसे हो, बड़े छोटों को सुख कैसे हो। बहनों की यही बात है कि सास ससुर सुख कैसे हो, जेठ जेठानी को सुख कैसे हो, ननद आदि को सुख कैसे हो। केवल उनको सुख देना है, सुख देना अपना काम है। इधम से इधम कौन से क्षेत्र, खेत है, खेत खेत आराम के लिए नहीं होता है, काम करने के लिए होता है खेत। खेत जो सोने के लिए आराम के लिए नहीं होता है, तो खेत है जो आराम के लिए नहीं है। यही तन कर फल विषय भाई, कोई शंका हो
वो पीपा इमरत बूटी यह संजीव, पीवो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी जी, पीवो गीता इमरत बूटी पढ़ पढ़ सरिता और उपन्यास पढ़ पढ़ कर लियो जीवन सत्यानाश कर लियो, फिर भी हो जो मति निराश फिर भी लज्जा राखण वाला गिरधारी मोटा धनी जी, लज्जा राखण वाला गिरधारी मोटा धनी जी, पीव वो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी जी ती वो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी गीता पाठ करो ने मांगी गीता पाठ करो जितने मांगी छोड़ो टीवी खेल सिनेमा छोड़ो पाओ भक्ति प्रभु की प्रेमा पाओ भक्ति ऐसी मिले न बारंबार मोज मिन खाकनी जी ऐसी मिले न बारंबार मोज मिन खाकनी जी पीवो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी जी पीवो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी यह संजीवनी जी यह संजीवनी राजा गो रैन पड़ा जब सोवो जागो गीता दर्पण में मुख जोगी पातक जन्म जन्म राखो वो पातक बरसे ठाकुर जीरी संसारी कृपा घनी जी बरसे ठाकुर जीरी संसारी कृपा घनी जी पीवो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी जी पीवो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी पढ़ कर देखो नजर पसार पढ़ कर भरिया भाव अनंत अपार भरिया प्रभु की शरणागति है सार प्रभु की सारा दुख दारिद मेटन की यह चिंतामणि जी सारा दुख दारिद मेटन की यह चिंतामणि जी पीवो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी जी पीवो गीता इमरत बूटी यह संजीवनी